तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब दो। लेकिन आप मेरे बेटे उस फजल से तकवियत पाएं जो आपको मसीह ईसा में मिल गया है। जो कुछ आपने बहुत गवाहों की मौजूदगी में मुझसे सुना है उसे मातबर लोगों के सुपुर्द करें, या ऐसे लोग हों जो औरों को सिखाने के काबिल हों। मसीह ईसा के अच्छे सिपाही की तरह हमारे साथ दुख उठाते रहे। जिस सिपाही की ड्यूटी है वो आम रियाया के मामलात में फंसने से बाज रहता है, क्योंकि वो अपने अफसर को पसंद आना चाहता है। इसी तरह खेल के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले को सिर्फ इस सूरत में इनाम मिल सकता है कि वो कवायद के मुताबिक मुकाबला करे, और लाजिम है कि फसल की कटाई के वक्त पहले उसको फसल का हिस्सा मिले जिसने खेत में मेहनत की है। उस पर ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि खुदावन आपको इन तमाम बातों की समझ अता करेगा। मसीह ईसा को याद रखें जो दाऊद की औलाद में से है और जिसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया गया है। यही मेरी खुशखबरी है जिसकी खातिर मैं दुख उठा रहा हूँ, यहाँ तक कि मुझे आम मुजरिम की तरह जंजीरों से बांध कर रखा गया है। लेकिन अल्लाह का कलाम जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता, इसलिए मैं सब कुछ अल्लाह के चुने हुए लोगों की खातिर बर्दाश्त करता हूँ ताकि वो भी नजात पाए। वो नजात जो मसीह ईसा से मिलती है और जो अबदी जलाल का बायस बनती है। ये कौल काबिल एतमाद है, अगर हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम बर्दाश्त करते रहें तो हम उसके साथ हुकूमत भी करेंगे। अगर हम उसे जानने से इनकार करें तो वो भी हमें जानने से इनकार करेगा। अगर हम बेवफा निकलें तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। लोगों को इन बातों की याद दिलाते रहें और उन्हें संजीदगी से अल्लाह के हुजूर समझाएं कि वो बाल की खाल उतारकर एक दूसरे से न झगड़ें। यह बेफायदा है बल्कि सुनने वालों को बिगाड़ देता है। अपने आप को अल्लाह के सामने यूं पेश करने की पूरी कोशिश करें कि आप मकबूल साबित हों, कि आप ऐसा मजदूर निकलें जिसे अपने काम से शर्माने की जरूरत न हो, बल्कि जो सही तौर पर अल्लाह का सच्चा कलाम पेश करे। दुनियावी बकवास से बाज रहें, क्योंकि जितना ये लोग इसमें फंस जाएंगे उतने ही बेदीनी का असर बढ़ेगा और उनकी तालीम कैंसर की तरह फैल जाएगी। इन लोगों में हमेनियुस और फिलितुस भी शामिल हैं जो सच्चाई से हट गए हैं। ये दावा करते हैं कि मुर्दों के जी उठने का अमल हो चुका है और यूं बाज एक का ईमान तबाह हो गया है। लेकिन अल्लाह की ठोस बुनियाद कायम रहती है और उस पर इन दो बातों की मोहर लगी है। खुदावन ने अपने लोगों को जान लिया है, और जो भी समझे कि मैं खुदावन का पैरोकार हूँ वो नाराजगी से बाज रहे। बड़े घरों में न सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, यानी कुछ शरीफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ कम कदर कामों के लिए। अगर कोई अपने आप को इन बुरी चीजों से पाक करे तो वो शरीफ कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन होगा। वो मखसूस व मुकद्दस मालिक के लिए मुफीद और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की बुरी ख्वाहिशात से भागकर रास्तबाजी, ईमान, मोहब्बत और सुलह सलामती के पीछे लगे रहें, और ये उनके साथ मिलकर करें जो खुलूस दिली से खुदावंद की परस्तिश करते हैं। हमाकत और जहालत की बहसों से किनारा करें। आप तो जानते हैं कि इनसे सिर्फ झगड़े पैदा होते हैं। लाजिम है कि खुदावंद का खादिम न झगड़े बल्कि हर एक से मेहरबानी का सलूक करे। वो तालीम देने के काबिल हो और सबसे गलत सलूक बर्दाश्त करे। जो मुखालिफ हैं और मुखालिफत करते हैं उन्हें वो नरमदिली से तरबियत दे, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह उन्हें तौबा करने की तौफीक दे और वो सच्चाई को जान लें, होश में आए और इब्लीस के फंदे से बच निकलें, क्योंकि इब्लीस ने उन्हें कैद कर लिया है ताकि वो उसकी मर्जी पूरी करें।